राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। छुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे, भूले जो मंजिल दिखा कर फासला उनका मिटा दे, प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना, प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। कब प्यास बुझती, प्यास है ये विश्व सारा, डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा, बन के खेवन हार नैया पार है तुमको लगाना, बन के खेवन हार नैया पार है तुमको लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, योगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।
ओम शांति। अ वेरी वॉर्म वेलकम आप सभी भाई बहनों का आज के हमारे इस स्पेशल संडे टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर जीवन में अनेक चुनौतियों का और परिस्थितियों का सामना हम करते हैं, वहीं पे एक स्वास्थ्य की ओर से भी अनेक चुनौतियां और परिस्थितियां हमारे सामने आती। तो आज के इस सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई साहब उपस्थित हैं। आप पिछले कई वर्षों से ईश्वरी ज्ञान और राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, आप डबल डॉक्टर हैं और वर्तमान समय आप एज सीनियर कंसल्टेंट ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपने एक विशेष प्रोजेक्ट कैट प्रोग्राम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोग्राम की भी रचना करी, जिससे अनेकों जनों को काफी स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और उनको एक स्वस्थ जीवन जीने के राह पे लेके चलने के आप माध्यम भी बने। और इसके लिए आपको अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया और आपको इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलिंग इन मेडिसिन भी, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको प्रदान किया गया। तो अनेकों पुरस्कारों से आपको आपके कंट्रीब्यूशन इन मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी के लिए आपको आपको पुरस्कारित किया गया, सम्मानित किया गया। तो भाई साहब, आपका हमारे एजुकेशन विंग संडे टॉक में
नमस्कार।
बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी की रिक्वेस्ट है कि आप आए और हमें बताएं कि कैसे हम अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। ओम शांति। भाई साहब,
शुरू करें।
हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी 1 मिनट साइलेंस बस शुरू करते हैं। ओम शांति। आप सभी का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सामयिक है। अगर आज आज हम देखें तो सारे विश्व में, जिसे हम कहें मॉडर्न मेडिसिन कहें या मॉडर्न हेल्थ केयर कहें, वो स्टेट ऑफ आर्ट है। आज हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल साइंस है, जिसके द्वारा हम इवन जीन थेरेपी कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हैं। सर्जरी में पूरी रोबोटिक्स आ गई है। आज रोबोटिक सर्जरीज हम कर रहे हैं, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज कर रहे हैं। बहुत छोटे से छेक के द्वारा हम पेट के कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी भी हम आजकल हम मिनिमली इन्वेसिव, जिसे हम मिनी कैप भी कहते हैं, वो कर लेते हैं। ब्रेन की सर्जरीज के लिए भी हमारे पास बहुत ही सुंदर सिस्टम्स बनेगा बन गए हैं। और अभी तो जीनोमिक्स पे काम चल रहा है। पिछले अगर 20 साल में देखें तो मेडिकल साइंस काफी एडवांस हुई है। आज हमारे पास पेट स्कैन, पहले भारत में एक भी नहीं था, सिर्फ एम्स में था, और अभी तो लगभग हर शहर में पेट स्कैन भी आ गए हैं, जिसके द्वारा हम फिजियोलॉजिकल स्कैनिंग कर सकते हैं ब्रेन की या कोई भी बॉडी के ऑर्गन्स की। कहीं भी कैंसर है तो उसका पता लगा सकते हैं। ये तो इतनी सब एडवांसमेंट होने के बाद इसके भी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये सब चीजें, सिस्टम्स बहुत ही कॉस्टली हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और दूसरी जो बात है, ये जो साइंस के सिस्टम्स हैं, ये सब वन डायमेंशनल हैं। बॉडी के सिर्फ एक ही सिस्टम को एड्रेस करते हैं। ये कोई सारी, मतलब पूरे एक इंसान को एड्रेस नहीं करते हैं। और WHO की डेफिनेशन भी देखें अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है जो 1947 या 48 में दी गई, वो क्या कहती है? वो कहती है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें हम शारीरिक तौर, फिजिकल माना शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पर स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ हैं। खाली आपको आज बीमारी नहीं है इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। तो स्वास्थ्य जो है खाली एक एक फिजिकल हेल्थ को भी नहीं कहते। इवन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या मेंशन करती है, जब भी वो हेल्थ की बात करती है तो साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी करती है, खाली बॉडी की हेल्थ की बात नहीं करती है। साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड एज हेल्थ। तो हम इंसान अगर आज का अगर हम देखें, ये जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो सिस्टम डेवलप किया, जो भी बता रहे हैं, जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद आज क्या स्टेटस है? और WHO ने ही 1977 में अल्माटा नाम की जगह है, आजकल उसको अल्मेटी कहते हैं, कजाकिस्तान में एक सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है, और वहां पर बड़ा क्लियरली ये कहा गया। 1977 में 200 देशों के हेल्थ प्लानर्स इकट्ठे हुए थे, उन्होंने प्लान किया कि 2000 तक हम सबको हेल्दी बनाएंगे, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080। और बकायदा 23 साल में एक बड़ा सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाया गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च करने का प्लान किया गया और बकायदा उसको डेवलप उसको कार्य में भी लगाया गया। पर 2000 में क्या देखा कि बीमारियां तो सारी बढ़ गई थी, और ज्यादा बढ़ गई थी, कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर उन्होंने कहा नहीं 2000 तक नहीं हो पाया, अच्छा 20 साल और दे देते हैं अपने आप को, 2020 तक हम सबको हेल्दी बना देंगे, एटलीस्ट सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हेल्थ देंगे सबको। पर उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सब जानते हैं। आज अगर 2021 में हम देखें, आप क्या समझते हैं, हम सभी हेल्दी हो गए, हैप्पी हो गए? क्या समझते हैं आप, अपने आप से पूछिए। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, शारीरिक हेल्थ की बात करें, तो आज जो 2015 में एक सर्वे हुआ था, मैं उसके ऊपर बात करता हूं, और अभी भी 2020 में एक सर्वे का प्लान चल रहा है और इट्स ऑनगोइंग। जो एडल्ट्स हैं 18 साल के ऊपर की उम्र के लोग हैं, तो ये देखने में आया कि किसी जैसे मेजर चार सिटीज भारत के ले लें अगर हम, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये चार मेजर कॉस्मोपोलिटन सिटीज हैं भारत की, तो उसमें देखा गया एडल्ट्स में हेल्थ का स्टेटस क्या है, फिजिकल हेल्थ का, शरीर के हेल्थ का क्या है। तो लगभग 100 में से 30 लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर है एवरेज, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज है, 100 में से 35-40% लोगों को ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, 100 में से 35% लोगों को GERD है। GERD माना एसिडिटी रिफ्लक्स होती है, अंदर पेट से ऊपर एसिड रिफ्लक्स होता है। 100 में से 20% लोगों को बोन की प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेशली जो हमारी माताएं बहनें हैं 50 साल की उम्र के बाद की, या मेनोपॉज होने के बाद, पीरियड्स खत्म होने के बाद, अगर उनका अगर देखें तो उनमें से 50% के लगभग फिर फीमेल्स को, माताओं बहनों को ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, उसके कारण उनके घुटने खराब, ये हिप जॉइंट और पेल्विस खराब हो जाता है, घुटने एंकल जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं लगभग 10% लोगों को, सांस की तकलीफ है लगभग 10% लोगों को, कैंसर्स हैं लगभग 5% लोगों को, कोई ना कोई कैंसर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हार्मोन की बीमारी 5% लोगों को है। अगर हम ऐसे देखें लगभग मोटी मोटी बीमारियां, ज्यादा जैसे मैं हर हर बीमारी की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो 100 लोगों को 200 बीमारी हैं। आप जो सभी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, अगर आप भी अपने अंदर जाएंगे देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा कि आपके अंदर सबके अंदर आपको सबको अपने अंदर दो दो बीमारी तो मिल जाएंगी। जरा चेक करके देखिए आपको हैं दो दो बीमारियां एवरेज, और आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनको तीन तीन चार चार पांच पांच बीमारियां भी होंगी, और काफी सारी बीमारियां तो छुपी हुई होती हैं। आपको पता ही नहीं कब आने वाली, अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, अगर आप उनको अपने चेकअप कराने जाएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि सर्वे में ये किया गया, उनकी हिस्ट्री भी ली गई, उनका ब्लड प्रेशर देखा गया, डायबिटीज शुगर लेवल देखा गया, तो और उनका ईसीजी करके देखा गया, तो पता लगा कि उनको इतनी बीमारी है, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होती है ना, कैंसर भी लास्ट स्टेज में पता लगता है, छुपा हुआ होता है, बहुत सारी बीमारी हमको होती है हमें पता ही नहीं होती है, बहुत लास्ट स्टेज में जाके पता लगती है। तो ये सारी बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां हैं, लगभग बहुत ही भरपूर बीमारियां हैं, है ना। तो हमें अगर हम देखें तो हमारी बीमारियों का कोई एंड नहीं दिखाई देता है। तो बॉडी की इतनी बीमारियां हैं, जबकि इतना एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम हमारा डेवलप है। और अगर हम आगे देखें और आगे बढ़ें, अगर मेंटल बीमारियां देखें, मानसिक बीमारियां देखें, तो आज एक तो सब बीमारी सब व्यक्ति की जो ग्रसित है उससे, टाइप ए बिहेवियर से, लगभग हर आदमी आज टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, इससे ग्रसित है, क्योंकि मैंपन मेरेपन के कारण ऐसा पैदा होता है। आज लगभग हर आदमी, लगभग एक सर्वे में पाया गया 90% लोग आजकल टाइप ए हैं, सेम टाइप ए बिहेवियर कहते हैं इसे, जल्दीबाजी आम भाषा में कहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, कंपटीशन कंपैरिजन में रहते हैं, और इसे हम हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, है ना, पॉलीफेजिक, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा कारण है हमारी हार्ट की बीमारी का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, टाइप ए बिहेवियर, है ना। तो ये एक बिहेवियर हमारे अंदर जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, ये मानसिक बिहेवियर है ना। दूसरा जो बात है, हम जो हमारे अंदर एक है वो है एंजाइटी, है ना, क्या होगा, कैसे होगा ना, कब होगा, है ना। तो एक एंजाइटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है समाज में, आज की घटनाएं देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, बीएसई इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, है ना, हमारा देश के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं हो रही हैं, विश्व में भी हो रही हैं, है ना, कम्युनल जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप जानते हैं सभी, तो एंजाइटी कितनी है। एंगर, आप में से अपने आप को चेक करके देखिए, कितने लोग हैं जो आप में से, मैं समझता शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने गुस्सा नहीं किया हो, जो गुस्सा नहीं करते हो, चाहते तो नहीं गुस्सा करना कोई भी, कि तो कोई ऐसा है जो नहीं करता हो गुस्सा, सभी गुस्सा करते हैं, कोई अंदर अंदर करते हैं, कोई बाहर करते हैं, करते तो सभी है। जब गुस्सा करने से पता लगा कि गुस्सा करते हैं, तो हमारे अंदर एक बार गुस्सा करते हैं 3 दिन के लिए हमारी लगभग सारी हमारी मेमोरी पर असर पड़ता है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, हमारी किडनी का खून साफ करने का प्रोसेस पर असर पड़ता है, हमारी आंतों में खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है, और 3.5 गुना अधिक चांस हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के एक बार गुस्सा करने से, है ना। एंजाइटी हमारी, एंजाइटी की बात मैंने की, अच्छा फिर आज लगभग इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे भारत में भी लगभग 20% लोगों को डिप्रेशन है, कुछ माइनर डिप्रेशन, कुछ मेजर 10% लोग तो मेजर डिप्रेशन में है, इसके कारण सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है, आत्महत्या सुनते होंगे, वैसे आत्महत्या तो गलत शब्द है, जीव घात कहते हैं ना, कि हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं ना, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है ना। फिर आज काफी लोगों ने नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, इंसोमनिया, तो आज जो है एक हॉस्टाइल बिहेवियर, रिवेंजफुल बिहेवियर बढ़ता जा रहा है लोगों में, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, सिनिसिज्म बढ़ता जा रहा है, दूसरों में अवगुण दोष दृष्टि बढ़ती जा रही है, जिसके कारण समाज में एक दूसरे को हम एक दूसरे समाज में आज पति पत्नी में दोष देखती है, पत्नी में दोष देख रहा है, पत्नी पति में दोष देख रही है, शादी के पहले नहीं, शादी के बाद शुरू हो जाता है, बच्चे माँ बाप में दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, और माँ बाप बच्चों में अवगुण देखते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में अवगुण देखता है, और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर में अवगुण देखते हैं, किसी लेवल पे चले जाओ, आज सबकी दृष्टि जो है जैसे एक बगला होता है ना, बगले के सामने अगर आप 95 मोती रख दें और इसमें कहीं कहीं 5 कीड़े रख दें, तो उसको वो 5 कीड़े या 5 लार्वा ही दिखाई देंगे, मोती नजर नहीं आते, सभी की बगला दृष्टि हो गई। और एक हंस होता है, हंस के सामने 95 अगर कीड़े रख दें और 5 मोती डाल दें, तो उसको क्या दिखाई देता है, सिर्फ 5 मोती दिखाई देते, उसके कीड़े नजर नहीं आते। इंसान का काम है सबके गुण देखना, गुण ग्राही दृष्टि होनी चाहिए ना, और दृष्टि कैसी हो गई है, अवगुण ग्राही दृष्टि हो गई। तो आज मानसिक समस्या देखें तो टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, फियर, डर, डर बहुत ही कॉम। आज सबके अंदर डर है कि नहीं है बताइए, आप में से अपने आप को चेक कर लीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो निडर हैं, कुछ भी हो जाए अभी सभी को डर लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता है? मरने का डर सबको है, बीमारी का डर सबको है, बुढ़ापे का डर, गरीबी का डर सबको है ना? तो हम सबके सब अंदर डर। और आपको पता है, आप हिंदी शब्द को छुटा के देखिएगा, बीमारी शब्द कहाँ से आया है? बी माना डर भय, और मारी माना को बने रहना। बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ। तो जब आपके अंदर डर होता है, फियर होता है, तो आपका पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, हाइपोथैलेमस यहाँ है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसके नीचे पिट्यूटरी है, उसके पीछे पिनल ग्लैंड है, फिर थायराइड है गले में, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है यहाँ पर, फिर हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर दो, और फिर हमारे मेल फीमेल ग्लैंड, ओवरीज या टेस्टिस हैं, सात ग्लैंड होती है ना इंसान में। तो एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा होता है, जैसे सारे गामा पा धा निसा होता है ना। अगर यहाँ पे शांति है, प्रेम है, खुशी है, और अपने आप को आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो आपके अंदर शांति, प्रेम, खुशी है, और पूरा का पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, सारे हार्मोनल सिक्रीशंस वो हार्मोनी में निकलते हैं, सामंजस्य होता है आपस में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम, पूरी लाइफ म्यूजिकल हो जाती है, संगीतमय हो जाती है, अगर यहाँ पर आप सोल कॉन्शियस हैं तो। तो अगर आप बॉडी कॉन्शियस है, रोल कॉन्शियस है, मेटेरियल कॉन्शियस है, आउटर सेल्फ कॉन्शियस है, जो आज का सारा समाज है, तो क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा हेवायर से जाता है, और लाइफ केओटिक हो जाती है, शोर, जीवन एक शोर बन जाता है। तो वही आज है, फियर, डर हम सबके अंदर समाया। तो कम से कम छह बीमारियां सबको फ्री में मानसिक बीमारियां मिलेंगी, दो बीमारी शरीर की और छह बीमारियां मन की, है ना, सबको ही मिली है। आप चेक कर लीजिए, है आपके अंदर, नहीं है? हालांकि आप ज्ञान को समझ गए तो शायद थोड़ी कम होंगी कि तो है, फिर भी अंश तो अभी भी है, खत्म तो नहीं हुई है। और फिर समाज को देखें तो समाज में आज क्या है, कंपटीशन, कंपैरिजन, हर जगह देखो तो आज कट थ्रोट कंपटीशन, कोई प्रोफेशन में चले जाओ, है ना, न्यूज़पेपर में देख लो, है ना, सब जगह देखो क्या है, हेट्रेड, जेलेसी का वातावरण है ना, रेप्स हैं, मर्डर्स हैं, सब खबरें देखो तो क्या एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं इतने सारे, समाज में देखो तो कन्फ्लिक्ट सारा, ये समाज का आज का है, जैसे अखबार आज का है। और फिर अगर मानसिक, अगर आप आध्यात्मिक हेल्थ में चले जाओ तो वहां भी क्या हालत है, आध्यात्मिक हेल्थ देखें तो आज टेररिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टेररिज्म, आतंकवाद, ये क्या समस्या है आज आपस में हमारे जो है, कैसे हैं समाज में देखो तो, पति पत्नी के बीच में, बच्चों माँ बाप के बीच में, वही बातें, फिर मैं बात करूँ कन्फ्लिक्ट्स की बात है, वो भी इसका कारण क्या है, आध्यात्मिक हेल्थ नहीं है, तो जिसकी वजह से आज इवन कम्युनल हार्मनी भी कैसी खराब हो गई, कम्युनल राइट्स जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन सब का कारण भी क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है। अगर बचपन से हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, नर्सरी में अगर ये सिखा दिया जाए, ए बी सी डी का मतलब क्या है, एक तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग होता है ना, अगर उनको हम सिखा देंगे ए फॉर आत्मा, बी फॉर परमात्मा या बी फॉर बाबा या बाप, है ना, और सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा, आत्मा पर, या हम कह दें ए पी सी डी कह दें, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन और ड्रामा, अगर बचपन में ही सीख जाए, नर्सरी में ही, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, कम्युनल हार्मनी भी हो जाएगी, टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, बच्चों में उस तरह के भाव, असंतुष्टता के भाव नहीं पैदा होंगे, और आपस में जो इंसानों के कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, आउटर या आपस में कन्फ्लिक्ट, वो खत्म हो जाएंगे, तो स्पिरिचुअल हेल्थ सबकी अच्छी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि आज समाज में ना तो फिजिकल हेल्थ है, ना मेंटल हेल्थ है, ना सोशल हेल्थ है, ना स्पिरिचुअल हेल्थ है। अगर हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस क्या चीज़ है, एक तो देखें फिजिकल हेल्थ कोई है नहीं दुनिया में आज ना, अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो क्या हम खुश हैं, अपने आप से पूछे क्या हम खुश हैं, एक खुशी की इंटरनेशनल डेफिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड परिभाषा क्या है, हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग। तुम खुशी जो है अंदर की बात है, हैप्पीनेस वो बाहर से नहीं आती है। आपको आज 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, आपका आज आपने शेयर में जहाँ पार्क पैसा लगा के रखा था बहुत सारे शेयर के एकदम वैल्यू एकदम बहुत बढ़ गई, वो खुशी नहीं है, वो आउटर हैप्पीनेस है जो क्षणिक है, थोड़े समय की है, फिर बाद में बहुत सारे दुख हो जाएंगे। तो रियल हैप्पीनेस क्या है, वो अंदर से आती है, और जब आप संतुष्ट होते तो आती, संतुष्टता से खुशी आती है। तो हमें ये बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो अब कहां से, आज कोई देखो आप हेल्दी भी कोई नहीं है, हैप्पी भी कोई नहीं, क्या करें, कहां से क्या करें, हैप्पीनेस कहां से आती है? हैप्पीनेस आती है ट्रूथफुलनेस से, हैप्पीनेस आती है सत्यता से। जब आप सत्य अपने सत्य में टिक जाते हैं ना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जो रियल ज्ञान आपको मिल जाए ना, सत्य की समझ मिल जाए, जहां एटर्निटी है वहां खुशी है। एटर्निटी, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, एटर्निटी है, मैं परमात्मा की संतान हूं, एटर्निटी है, मेरे सब संबंध उसके साथ है, एटर्निटी है, सदा है ना। और ड्रामा कर्म एटर्नल है, जो कर्म आपने कर लिया वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ड्रामा भी अविनाशी है ना, ABCD जैसे मैंने कहा। तो हैप्पीनेस जो है ट्रूथफुलनेस से आती है, फियरलेसनेस से आती है, निर्भयता से आती है, खुशी आती है शांति से, जब आप अंदर से शांत होते हैं, जब आपने सबके लिए, मेरे में सबके लिए प्यार होता है। खुशी आती है प्योरिटी से, मन और तन की शुद्धता से, धन की शुद्धता से आती है। अगर आपके अंदर गलत धन है, आपके पास काला धन है, तो आप अंदर से बहुत डरते रहते हैं। खुशी आती है पावर ऑफ टॉलरेंस से, जितना अधिक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, वो तो खुशी आती है। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते। खुशी आती है त्याग से, खुशी आती है आपके अंदर सेल्फलेसनेस, मतलब आप अगर सेल्फिश हैं तो नहीं खुश रह सकते हैं, सेल्फलेस हैं तो हो सकती है। कंपैशन है, अगर आपके अंदर दया है, रहम है, करुणा है, क्षमा भाव है, उससे खुशी आती है। तो क्या करें हम, धरती पे तो प्रॉब्लम है, खुशी भी नहीं है, है ना, शांति प्यार खुशी मार्केट में मिलती नहीं, तो कहां जाएं? हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल्स में देखें, डॉक्टर्स को देखें, तो डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारी है आम पॉपुलेशन से भी। सर्वे किया गया अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में, डॉक्टर्स वर्सेस जनरल पॉपुलेशन, तो देखने में आया ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को है, डायबिटीज ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को है, हार्ट अटैक्स ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को आते हैं, मोटापा ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स को है। तो इसका मतलब कहीं वो भी लैग कर रहे हैं, उनको भी शायद पता नहीं है कि हम हेल्दी और हैप्पी कैसे रहें। मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है उनके अंदर, है ना। तो क्या करें, जो हेल्थ प्रोवाइडर्स है वही हेल्दी नहीं है, वही हैप्पी नहीं है, तो क्या करें। तो मुझे याद है जब मैं 1986 में जब एम्स में था, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में था, तब उससे भी पहले जब दिल्ली में मेरा अपना एक हॉस्पिटल था, तो मेरे को एक दिन ऐसा ही जैसे मुझसे ब्रह्मा कुमारी बहन ने बताया कि आपको हमारे यहाँ के हमारे एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन करनी है। तो मैंने कहा किसी और को बुलाइए, मैं तो बहुत बिजी हूँ, आप किसी और को बुला लीजिए, नहीं नहीं आपके द्वारा ही होगा। तो जब मैं उसका फीता काटते ना कैची से, इनॉग्रेशन का फीता काटते हैं कैची से, तो तभी मुझे अंदर से आवाज आई कि अंदर से कोई मुझे कह रहा है कि क्या आप, मैं बहुत बिजी था, आई वॉज वेरी वेरी बिजी, डे और नाइट बहुत पेशेंट देखता था, और मेरे पास एडमिट भी बहुत सारे पेशेंट रहते थे, ना खाने की फुर्सत थी, ना सोने की फुर्सत थी, कुछ भी काम करने की मुझे फुर्सत नहीं थी। तो लोग मुझे कहते थे, वो तो मैं समझता था मैं बहुत बिजी हूँ, लोग भी मुझे बहुत मानते थे इस एरिया में। मुझे उस समय MP की भी टिकट पर तब ऑफर की गई थी कि आप यहाँ से आउटर दिल्ली से आप इलेक्शन लड़े, कोई पार्टी वालों मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा, मेरे बहुत अच्छा नाम था पूरे एरिया में। तो ये हालत थी कि मैंने तब तब मुझे अंदर से आया, क्या डॉक्टर, क्या तुम जो बच्चे जो तुम जो कर रहे हो, क्या उससे तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे? जैसे वो चल रहा था एग्जीबिशन, मुझे वो बहन जी समझा रही थी, तो मेरे को अंदर से वही आवाज आई जा रही थी कि नहीं, क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे जैसे तुम कर रहे हो? तो जब मैं घर गया लंच करने लगा, तो लंच करते समय मुझे वही आवाज आ रही थी, क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे, क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर लोगे? तो मैं अपने आप से बातें करते मुझे महसूस हुआ, मैं तो सारी दुनिया कैसे ठीक कर सकता हूँ? मेरे एरिया में सपोज अगर मैं आउटर दिल्ली की पॉपुलेशन में, तो कितनी पॉपुलेशन है, उस पर कितने लोग मुझे दिखाने आते हैं, और बीमारियां तो बार बार होती रहती हैं, वही बीमारियां बार बार होती रहती हैं, बीमारी की जड़ तो हम खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो तब मैंने मैंने प्लान किया, वो था 15 जनवरी का दिन था 1986 का, और उस तब मैंने प्लान किया मैं आगे आगे पढ़, मैं तब तक MBBS ही था, हाउस जॉब किया हुआ था फर्दर, उसमें वो किया हुआ था फर्दर, एक्सपीरियंस लिया हुआ था, बट मैंने अभी तक MD नहीं की थी। तो मैंने शायद मैं MD करूंगा तो शायद मेरी फर्दर नॉलेज मिलेगी, तो मैं तब मैंने PG एंट्रेंस का एग्जाम दिया और मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। और एम्स में सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं जब एम्स ऑल नेशनल मेडिकल साइंसेज में ज्वाइन किया, तब मुझे पहली बार ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय मिला। फिल्म देखते हुए, फिल्म देखने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, मुझे पता लगा। और मुझे जब ये क्लैरिटी आ गई आत्मा की और परमात्मा की, तो तब जो है ये, फिर उसके बाद मेरा MD करने के बाद मेरे को फिर कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, फिर दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स में रहा, एक बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में भी रहा। उन दिनों फिर मेरे को सारी बातें, जैसे ज्ञान में चलने के बाद, रोज अमृत वेला और मुरली करने के बाद, रोज परमात्मा से बहुत और नजदीकी आने के बाद, मुझे क्लैरिटी हुई, एक 3-dimensional हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व हुआ। वो जो 3-dimensional हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व हुआ, क्योंकि आज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 1-dimensional है। जो कितना भी एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, पर सारा सारा 1-dimensional है, सिर्फ बॉडी को एड्रेस करता है। और किसी भी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्कूल में, भारत में या विदेशों में, बॉडी के बारे ही पढ़ाया जाता है, ना माइंड के बारे में, ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। जबकि आज हम जानते हैं कि सारी सारी बीमारियां, लगभग सारी सारी बीमारियां, इवन जुकाम भी, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, GERD हो, बोन्स की प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी भी है, सबकी सब साइकोसोमेटिक है। उनका ओरिजिन पहले मन में है, पहले मेंटल डिसीज होती है, डिसीज लॉस ऑफ ईज, दो शब्दों से ना डिजीज शब्द, अंदर से शांति खत्म होती है मन में, फिर शरीर में मैनिफेस्ट करती है। तो तब मुझे इस सिस्टम का क्लैरिटी हुई, और तब से तो इसमें तीनों हेल्थ, 3-dimensional हेल्थ केयर सिस्टम मींस एड्रेसिंग सोल, माइंड एंड बॉडी। एक इंसान के तीन एस्पेक्ट हैं, आत्मा है, आत्मा का एक एस्पेक्ट जो है वो मन है, और तीसरा बॉडी है, तन है। आप कहेंगे मन तो आत्मा का एक एस्पेक्ट है, फिर अलग से मन को क्यों करने का? अगर मुझे आपको कोई चीज देनी है, मैं सपोज आपको ये देना चाहता हूँ मोबाइल, तो मैं कैसे दूंगा? ऐसे तो नहीं मेरे पास रखा है तो मैं दे दूंगा, मुझे हाथ आगे करना पड़ेगा, और आपको भी आगे हाथ से, अगर आपने हाथ बांध के रखे तो आपको आपको आप ले सकते हैं क्या? आपको भी हाथ आगे करना पड़ेगा। तो आत्मा जो भी एनर्जी देती है वो मन से बॉडी को देती है, मन के माध्यम से देती है, मन के थ्रू देती है, मन के माध्यम से। तो मन माध्यम है शरीर को एनर्जी देने का। आत्मा के पास जो एनर्जी है वो आत्मा मन के माध्यम से शरीर को देती है, और मन के माध्यम से ही हम दूसरे से ले सकते हैं। किसी के द्वारा लेना हो ना, तो मन के माध्यम से ही हम दूसरे से ले सकते हैं, विचारों से, भावनाओं से, अपने एटीट्यूड से, वृत्ति से, दृष्टि से, है ना। तो आत्मा के पास जो है, आत्मा के पास क्या चीज है, और मन के पास क्या, मन क्या है और शरीर क्या है। शरीर के बारे में तो आज बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास। मुझे याद है जब डॉक्टर कलाम साहब, जब हमने हार्ट का प्रोग्राम शुरू हो गया, और अब्दुल कलाम साहब जब माउंट आबू विजिट किए पहली बार, 98 में विजिट किया था उन्होंने हमारे पास नवंबर में, तो तब उन्होंने मुझसे बातें पूछी कि थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम की आप बात करते कैसे कैसे क्या है, आत्मा की कौन सी एनर्जी, आत्मा से आप कैसे, आपने जो रिसर्च प्रोग्राम बनाया कि ब्लॉकेज खुल जाएंगी, बीमारी ठीक हो जाएंगी, कैसे ठीक हो जाएंगी। तो तब मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे आत्मा की एनर्जी कैसे, आत्मा के पास कौन सी एनर्जी है और मन कैसे माध्यम है और शरीर को कैसे एक एक आत्मा की कौन सी एनर्जी कैसे हील करती है। तो तब उनको बहुत खुशी हुई और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने फिर मुझे एक जो डीआरडीओ की लाइफ साइंसेज लैब है ना, तो उसकी एक मीटिंग थी डीआरडीओ के डायरेक्टर्स की, उसमें लगभग भारत में 30 लैब्स थी डीआरडीओ की ना उसमें टोटली। तो तब मुझे एक इन्वाइट किया गया उनकी मीटिंग्स में, राउंड चेयर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें मुझे बुलाया गया। तब मुझे भगवान ने और डिटेल में सारा सिस्टम समझाया, जैसे हम सोल माइंड बॉडी मेडिसिन भी कहते हैं या थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम भी कहते हैं, वही मैं आपसे थोड़ा सा ब्रीफली शेयर कर लेता हूँ। समय की कमी होने के कारण से डिटेल में नहीं जाऊंगा, किंतु थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लूंगा। पहले तो इस सिस्टम का जो ये जो थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर का सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो समझ लें, हम बेसिक मोटी मोटी बात समझ लेते हैं। पहला शब्द जो है हेल्दी शब्द है, वो दो शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, हील दाई सेल्फ। अर्थात इस सारे प्लेनेट पे, सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है, आप क्या समझते कौन है? क्या वो डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स आपको हील कर सकते हैं? क्या भगवान आपको हील कर सकते हैं? क्या आपके परिवार वाले आपको हील कर सकते हैं? कोई साधु संत आपको हील कर सकता है? कोई हीलर आपको ठीक कर सकता है? कर सकता है? क्या पैसा आपको ठीक कर सकता है? नहीं। सारे प्लैनेट पे एक ही आदमी है, एक ही हस्ती है, वो कौन है? स्वयं आप हैं। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, माता पिता और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपकी हजार गुना मदद कर सकता है। इंसान अगर आपने मदद की होगी तो आपकी मदद करेगा, अगर आपने मदद नहीं की होगी तो आपको मदद समाज से नहीं मिलेगी, माता पिता से भी नहीं मिलेगी। अगर आप सपूत हैं तो कर देंगे, कपूत है तो वो भी बॉदर नहीं करेंगे, ठीक है, वी डोंट बॉदर, हमारे लिए वो है ही नहीं, नहीं? तो पहली तो बात हमें समझ लेनी कि मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में है। हील दाई सेल्फ, हील योर सेल्फ, कि सारे विश्व में एक ही व्यक्ति है जो हील करने वाला, वो सिर्फ मैं ही हूं अपने आप को हील करने वाला, पहली बात। दूसरी बात, अब जब मुझे ही खुद को हील करना है, इसे कहेंगे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं भारत में 2,000 लोगों पे 2,500 लोगों पे एक डॉक्टर है, क्या काफी है? कि अगर हम 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर कर दे तो भी क्या समाज स्वस्थ हो जाएगा? 500 पे भी एक डॉक्टर कर दे तो भी क्या स्वस्थ हो सकता है क्या? मैंने तो डॉक्टर्स खुद स्वस्थ नहीं है, डॉक्टर्स खुद बीमार हैं, ज्यादा बीमार हैं, आम सोसाइटी आम जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा बीमार है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी ज्यादा बीमार है। तो डॉक्टर्स को हम बढ़ा दें आज बहुत तो क्या समाज स्वस्थ हो जाएगा? तो भी नहीं हो सकता है। मैं तो समझता हूँ एक आदमी के लिए साथ एक डॉक्टर लगा दे तो भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं अचीव करना, किंतु फिर भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डॉक्टर को भी फिर एक डॉक्टर चाहिए केयर करने के लिए। और अगर भारत में हम 135 करोड़ लोग हैं और 135 करोड़, चलो बच्चों को छोड़ दो, 10 साल के नीचे के बच्चों को छोड़ दो, 110 करोड़ आदमी, 110 के 10 करोड़ हम में से हर एक अगर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मुझे खुद को हेल्थ हील करना है, मैं अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेवार हूं, तो क्या होगा? हम सब स्वस्थ हो सकते हैं, राइट? दूसरी बात, अब मुझे अपने आप को हील करना है तो सेल्फ अवेयरनेस, मुझे जानना होगा मैं कौन हूं, हीलर कौन है और हील किसको करना है। हेल्दी शब्द जो है का हिंदी रूपांतरण क्या है? स्वस्थ। और इसी में राज छुपा हुआ है हेल्दी शब्द का, स्वस्थ होने का, स्वस्थ, स्व माना आत्मा, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं नहीं, अंदर वाला, स्व, स्व माना अंदर वाला मैं, और अस्त माना स्थित। तो स्व मीन्स सोल, अस्त माना कॉन्शियस। तो हेल्दी का मतलब क्या हुआ, स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ, हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। अगर हम ये समझ जाएं, अगर हमें सदा स्वस्थ रहना तो क्या करना पड़ेगा, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहना पड़ेगा। जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो राजयोग सिखाया जाता है उसका पहला चैप्टर कौन सा है, पहला पार्ट कौन सा है, मैं आत्मा हूं, और आखिरी चैप्टर कौन सा है, अपने इस आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहना, तब सदा स्वस्थ है। उन आने वाला युग स्वर्ग या सतयुग कहें, उसमें सब स्वस्थ है। पहला पहला स्लोगन क्या, एवर हेल्दी। वहां कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, वहां का कोई भी देवी देवता कभी बीमार नहीं होता, ना वो शारीरिक तौर पे बीमार है, ना वो मानसिक तौर पे बीमार है, ना वो सामाजिक तौर पे बीमार है, ना वो आध्यात्मिक तौर पे बीमार है। वो शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ है, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ है ना, सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ है और आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ है। टोटल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ जिसे कहते हैं वो है। तो स्वस्थ अगर हम समझ जाएं, हम सभी, मैंने बताया बीमारी, बीमाना मारी, बीमाना भय, मारी माना कॉन्स्टेंसी ऑफ। अगर ये भय क्यों होता है, क्योंकि जब हम देहभान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, देह के संबंध संपर्क के भान में आते हैं, मेरा वो फला रिलेटिव, फला मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, को अचानक कुछ ना हो जाए, है ना, देह के पदार्थों के भान में आते हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरा प्लॉट है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा ये, मेरे, मेरी ये चीज है, मेरी चीज, मेरा शरीर है, इसको कुछ ना हो जाए, मेरी, मेरा, मेरा जब करते हैं ना, तो उसमें डर लगता है, मैं देह हूं उसमें डर लगता है, मेरा देह अभिमान से भी डर लगता है, मेरा नाम खराब नहीं हो जाए, मैं डॉक्टर हूं मेरा नाम बदनाम नहीं हो जाए, मैं ये हूं मेरा इसका ये नहीं हो जाए, मैं मेल हूं मैं फीमेल हूं, ये भान जब आता है तो हम बीमार होते हैं, इसमें भी डर पैदा होता है। और फिर देहभान के स्वभाव संस्कार, देहभान के स्वभाव संस्कार क्या है, देहभान के स्वभाव है काम, नेचर, जैसे आग की नेचर क्या गर्मी और पानी की नेचर ठंडक है, ऐसे ही देहभान, देहभिमान के नेचर है क्या, नेचर है उसका स्वभाव क्या है, काम विकार। काम विकार मीन्स देह दृष्टि, एक दूसरे को देह के, देह के भान से देखना, मेल फीमेल के भान से देखना, देखकर देह की तरफ आकर्षण होना या विकर्षण होना भी देव काम विकार है। तो देह की दृष्टि से किसी को देखना ये काम विकार है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विकार जनित हैं किससे, देहभान जनित, देहभान से पैदा होते हैं। ये पांच बीमारियां हैं, बड़ी रोग है, जो कि सर्व बीमारियों के कारण है। और देहभान से जो इनको, पांच विकारों को जो हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारे अंदर कुछ आदतें बन जाती हैं, संस्कार, संस्कार में आदतें बनती हैं। आलस्य, एक तो सबसे बड़ा तो आलस्य पैदा होता है, लेजीनेस आती है, अलबेलापन, केयरलेसनेस आती है। दूसरा, दूसरों में, दूसरों के अवगुण देखने लगी नेचर, जो बताया ना मैं थोड़ी देर पहले आपको, दोष दृष्टि पैदा होती है, सिनिज्म, सिनिसिज्म, सिनिकल नेचर बन जाती है, सिनिकल बिहेवियर हमारा हो जाता है। फिर हमारा हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है, बदला लेने की भावना, फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को हम, बदला, उसको बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। हम शक करना शुरू कर देते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, सस्पिशियस नेचर बन जाती है, एज्यूमिंग नेचर बन जाती है हमारी, जिसे हम स्किजोइड नेचर भी कहते हैं, बाद में यही स्किजोइड बिहेवियर कहते हैं, स्किजोफ्रेनिया का कारण है ये। फिर हमारे अंदर एंजाइटी हो जाती है, चिंता रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, फियर, फियर पैदा होता है। और हमारे अंदर हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, जिसे हम कहते हैं जल्दीबाजी कहते हैं आम भाषा में, कंपटीशन, कंपैरिजन हो जाता है। और फिर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है। तो ये 10 मोटी मोटी बातें हमारे आदतें बन जाती हैं। उनके फिर आगे हर एक के 10-10 और भी बच्चे, 10-10 और नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं। तो हमारा जो अंदर सब कुछ भरपूर हो जाता है नेगेटिविज्म से, नहीं? तो ये जो हमारे अंदर जो ये जो भान है ना पैदा होता है, और इसकी बजाय अपने को आत्मा समझ लो तो क्या हो जाएगा, आमे एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूं, मैं देह नहीं हूं, ये एनर्जी एटर्नल है, जन्म मरण से परे है, बचपन जवानी बुढ़ापे से फ्री है ना, गरीबी अमीरी से फ्री है, शरीर छूट जाएगा किंतु मैं आत्मा तो एटर्नल हूं ना। तो ये जब भान पैदा होता है ना अंदर से नशा, तो ये आपको हेल्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है। तीसरी बात है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो पहली मैंने बताई सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी बताई सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मेन मेन सिद्धांत, पहला नंबर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, और तीसरा जो सिद्धांत है मेन जो है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कि मेरी अप्रोच लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। खाली में बैठ के मेडिटेशन करता रहूं वो भी जीवन नहीं है, खाली मन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच लगाता रहूं तो भी ठीक नहीं है, और खाली रेगुलर मैं वॉकिंग करता रहूं, नेचर की ओर करता रहूं, हर्बल में साधन में खाना पीना फल और सब्जियां खाना शुरू कर दूं, है ना, डाइट भी ठीक करूं, रोज सैरी सैर करता रहूं, एक्सरसाइज ही करता रहूं, साधन कपाल भाती व्यायाम करता रहूं, तो वो भी ठीक नहीं है ना, नहीं, या साधन सोता ही रहूं, आराम ही करता रहूं, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें बहुत बहुत आवश्यक है कि हमको हमारे एक लाइफ के प्रति मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो जब मुझे एक एक बात हम समझ गए कि मैं जो हूं, मैं अपने लिए अपने हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, दूसरी बात कि मैं आत्मा हीलर हूं, मुझे आत्मा के पास जो 7 एनर्जी हैं, 7 स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, उस वो हील करती हैं, और मैं हीलर हूं, मैं आत्मा हीलर हूं। हील किसको करना है? एक तो मन को करना है, एक शरीर को करना है। मन बीमार हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, दो चीज को मुझे हील करना है। ये बात क्लियर हो गई? अब जब मुझे जिम्मेवारी मिली है, आत्मा को जिम्मेवारी मिली हील करने की, आत्मा ही डॉक्टर है किसका, मन का और शरीर का, तो अब क्या चाहिए? अब उस आत्मा को शक्ति देनी पड़ेगी कैसे हील करना है, उसको प्रोसेस पर समझानी चाहिए, उसको प्रोसेस पता होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में कौन मुझे बताएगा, तो उस प्रोसेस को बताने वाला कौन है, और वो प्रोसेस भी ट्रूथ होना चाहिए, बिकॉज पावर कहां से आती है? सत्य से आती है। सत्य से पावर आती है, सत्य से आती है, ट्रूथ से पावर आती है ना। तो सत्य क्या चीज है? सत्य की 2 क्वालिफिकेशन है। पहले तो मैंने बताया सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ होता है। दूसरा सत्य अनचेंजेबल होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है, राइट? तो सत्य कौन है, परम सत्य कौन है? कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा परम सत्य है, परमात्मा जन्म मरण से परे है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है। तो ये ज्ञान जो सत्य की समझ कौन देता है हमको? परमात्मा देता है। तो परमात्मा क्या समझ देता है? पहले तो आत्मा के बारे में बहुत गहराई से हमको बताता है कि तुम कौन हो, फिर माइंड के बारे में बहुत, मन के बारे में बहुत गहराई से बताता है कि मन क्या है, तीसरा जो है बताता है वो फिर बताता है बॉडी के बारे में, हमको सही नॉलेज परमात्मा ही देता है, किताबों में मिलती है पर वो भी इनकम्प्लीट होती है, परमात्मा बताता है, और तीनों का आपस में क्या संबंध है वो परमात्मा बताता है। और हमारे अंदर एक घड़ी भी है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाइपोथैलेमस में होती है वो घड़ी, वो घड़ी भी हमारे अंदर है, उसके बारे में हमको अवेयरनेस परमात्मा स्वयं देता है। रादर हमको सिखाता है इस युग में, संगम युग में, खुद आकर के सिखाता है किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय मेडिटेशन करना है, किस समय साधन के लिए प्लानिंग करनी है, किस समय आपको एक्सरसाइज करनी है, किस समय आपको नाश्ता करना है, किस समय लंच करना है, किस समय डिनर करना है, किस समय आपको घर घर या ऑफिस का काम करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, किस समय आपको लंच करना है, किस समय आपको फ्रूट्स खाना है, किस समय आपको डिनर करना है, किस समय आपको फिर अपने आप को वाइंड अप करके सो जाना है। तो हर हर काम को हमें अपनी अंदर की घड़ी के अनुसार करना सिखाता है। अभी आजकल के लाइफ में बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, क्योंकि आजकल हम अंदर की घड़ी के अनुसार नहीं चलते हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो हमारी जीवन शैली कैसी बन गई, हम हमारी प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल बन गई है। क्योंकि मैं ऑफिस से 10 बजे रात को घर आता हूं, तो मेरा डिनर करने का टाइम 11 बजे है, सोने का टाइम 1 बजे है रात को, है ना, सुबह सुबह 1 बजे है, और उठने का टाइम मेरा फिर 9 बजे है। प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल है। बायोलॉजिकल क्लॉक बेस्ड लाइफस्टाइल नहीं है। परमात्मा फिर दोबारा से हमको सिखाता है कि बच्चे किस समय सोना है, किस समय उठना है। और जब हम इस सिस्टम में इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम देवी देवता बन जाते हैं। तो हमें देवी देवता बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, जो कंप्लीटली हेल्दी, एवर हेल्दी इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य से देवता बनने की ट्रेनिंग है। तो ये जो तीन है, पहले परम, इसका भी प्रोसेस है। आप एजुकेशन वाले जानते होंगे, हर इंफॉर्मेशन, हर जब एजुकेशन दी जाती है, किसको ट्रेन किया जाता है, उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन, दूसरा है तो एजुकेशन, तीसरा होता है काउंसलिंग। तो पहली है इंफॉर्मेशन, सूचना दी जाती है। जो हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स कराते हैं ना, जैसे हम 7 दिन का हार्ट का सिस्टम, जो 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी, एक हमारा प्रोग्राम है जो 7 दिन का इनहाउस प्रोग्राम होता है, हम रन करते हैं शांतिवन में, पिछले 25 साल से रन कर रहे हैं, और आज लगभग 1768 से ज़्यादा हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, विदेशों में भी कर चुके हैं। उसमें विद स्पाउस बुलाते हैं और उनको सिखाते हैं, और फिर इनको हम दिलवाले कहते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड, उनको वो जाकर के फिर औरों को सिखाते हैं। तो आज हमारे 10,000 से ज्यादा दिलवाले हैं जो दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं सारे वर्ल्ड ओवर। तो और ये वो दिलवाले, वो हार्ट पेशेंट्स जिन्होंने अपने एंजियोग्राफी में अपनी ब्लॉकेजेस खोल ली है, अपने ब्लड प्रेशर डायबिटीज से मुक्ति पाई है काफी हद तक, और भी दसियों तरह की मन और तन की बीमारियों से मुक्ति पाई है, और डीआरडी कोलैबोरेशन में हमने रिसर्च किया और इसको पब्लिश भी किया, और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्टडीज रही है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट माना जिसमें सारे वर्ल्ड में जो है ये नंबर 1 पे रही, टॉप 20 स्टडीज होती है वर्ल्ड की जो एक साल में पब्लिश होती हैं, उनको फिर बकायदा जो सबसे ज्यादा मोस्ट साइटेड होती है, मोस्ट विजिटेड होती है बाई दी रिसर्चर्स डॉक्टर्स एंड पब्लिक, उनको उसके हिसाब से नंबर दिया जाता है। पहले साइंटिफिक बेस होना चाहिए, उसके बाद ही फिर इनकी नंबरिंग की जाती है। जैसे टॉप 10 गीत होते हैं ना, टॉप 10 फिल्मों के गीत होते हैं ना, टॉप 10 ऐसे कुछ होते हैं ना हर साल, तो ऐसे ही टॉप 10 रिसर्चेस होती हैं हर साल। तो टॉप 10 में भी 2.5 साल रही है हमारी रिसर्च वर्ल्ड की टॉप 10 स्टडीज में, जिसको माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल कहते हैं। तो हमने जो है इसमें ये जो ये बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, और तीसरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो पहला इंफॉर्मेशन दी जाती है, 7 दिन का जो ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एजुकेशन डेली बेसिस पे होती है, जिसे हम परमात्मा की हम मुरली कहते हैं, रोज सुनते हैं, रोज अपडेट होता है डाटा, है ना, रोज उससे हम रोज, और काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग फिर पर्सनल लेवल पे परमात्मा से होती है। जब आप परमात्मा से संबंध रखना सीख जाते हैं तो आप परमात्मा से डायरेक्ट समझ सकते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आती तो हमारी जो टीम से भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हमारी टीम आपको समय समय पर गाइड करती है, अगर आपको पर्सनल क्वेश्चन होता तो उसकी भी माना उसका भी अरेंजमेंट होता है, फिर तो आप परमात्मा से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं जो हम सबका टीचर है। तो पहले तो ये बात समझ गए आप, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरी बात, आत्मा जो है, आत्मा की एनाटॉमी क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, जो कि हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और उसमें ही बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और उसी में उसके और पिट्यूटरी के जंक्शन पे एक सीट ऑफ द सोल कहते हैं उसको, वहां पर सीट है सोल की, कंट्रोल रूम है वो दोनों ब्रेन्स का। पूरा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है, ब्रेन में हर चीज का सेंटर है, आंखों का देखने का केंद्र पीछे है, बोलने का केंद्र यहाँ है, सुनने के केंद्र यहाँ है, हमारा जो पीछे का जो पीछे जो है ना जो लोअर ब्रेन होता है उसमें हमारा हार्ट का सिस्टम और सांस लेने का सिस्टम है ना, हमारा मोटर सिस्टम, मैं हाथ को हिला रहा हूँ तो उसके लिए हमारा जो है यहाँ पर सिस्टम है, उसके पीछे सेंसरी सिस्टम है ना, हमारा विजुअल सिस्टम तो पीछे हो गया, यहाँ पर हमारा मेमोरी केंद्र है, हमारे थॉट्स और थॉट्स हमारे हाइपोथैलेमस में आके रिलीज एनकोड होते हैं, और हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारा इमोशंस और एटीट्यूड्स का सिस्टम है, वहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं, मतलब ब्रेन में हर चीज का पूरी बॉडी के पूरी प्रोसेसिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होती है। इसे देखा होगा कई बार इंजरी हो जाती है, हेड इंजरीज हो जाती हैं, कई बार स्ट्रोक हो जाता है, क्लॉट हमारे हार्ट से या गर्दन की आर्टरी से दिमाग की नसों में चलाता है, आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, आवाज चली जाती है कई बार नहीं भी जाती है, ना देख सुना होगा ना आपने, ऐसा ऐसा होता है जब स्ट्रोक, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, तो वो सारा ब्रेन का सिस्टम है, तो उसका भी कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी की जो हार्मोनल ग्लैंड हैं उनकी मास्टर ग्लैंड है, वो उसका कंट्रोल रूम पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरे हार्मोन सिस्टम का कंट्रोल रूम पिट्यूटरी है, और पीनियल ग्लैंड जो बीच में है बिल्कुल छोटी सी, पहले कहते थे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड जो है वो आत्मा का केंद्र है, आत्मा का सीट है, नहीं तो वो गलत बाद में सिद्ध हुआ, पीनियल ग्लैंड आत्मा सिर्फ वो एक नींद के हार्मोन निकालती है, हमें प्रॉपर नींद आए उसके लिए हार्मोन निकलता है वहां से, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, और हाइपोथैलेमस से कुछ ब्रेन के ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो नौ फैक्टर्स निकलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से आठ हार्मोन निकलते हैं, नौ वहां से हाइपोथैलेमस से और आठ यहाँ से और एक पिट्यूटरी से निकलता, तो 18 हार्मोन लगभग सुबह सुबह अगर हम 4 से 5 के बीच में आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय, 4 से 5 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय अगर अपने को अगर आप आनंद की स्थिति का अनुभव कर लें, तो आइए देखने में कि आपके जो 18 के 18 हार्मोन हार्मनी में निकल जाते हैं, जिससे नेक्स्ट 24 घंटे में आपकी जो भी बीमारियां हैं मन और तन की, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, या एंजाइटी बहुत, या शरीर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या जो भी मतलब बीमारी है, वो सारी सारी कम हो जाएंगी अगले 24 घंटे। कैंसर है बॉडी में, अगर इसकी बजाय अगर आप इस समय सो रहे हैं आनंद की बजाय सपने देख रहे हैं, और ये देखने में 4 से 6 के बीच में जो भी सपने देखते हैं वो देखते टेरर ड्रीम्स होते हैं, विकारों के सपने होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सपने होते हैं, या टेरर ड्रीम्स होते हैं, डरावने सपने होते हैं, तो अगर आप इस समय सो रहे हैं तो क्या होगा आपके अंदर, कैसे हार्मोन निकल रहे होंगे, ये जो 18 हार्मोन सारी इम्बेलेंस हो जाएगा, डिसहार्मनी हो जाएगी, और अगले 24 घंटे में आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, फियर बढ़ जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, अगले दिन नींद नहीं आएगी, कम आएगी, क्वालिटी नहीं होगी, डीप स्लीप नहीं आएगी, और आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, जो भी तकलीफ है जीआरडी सब बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइट, सुना होगा ना आप सबने, इसलिए कहा जा रहा है इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करना ये बहुत बहुत ऑप्शनल नहीं है, इट इज नॉट ऑप्शनल फॉर एनी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट, इट इज अ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, राइट। आज सभी बीमार क्यों है मानसिक और शारीरिक तौर पर, क्योंकि सबके सब आज गड़बड़ यही कर रहे हैं, यहीं पे सब गड़बड़ कमजोरी है, या और तो उठते नहीं है, और उठते हैं उठ भी जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं, उठते ही टेलीविजन खोल देते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, अपने आप से जुड़ने की बजाय दूसरों से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ने की बजाय दूसरों से जुड़ जाते हैं, तो पहली तो बात ये समझने की है कि वो जो हार्मोन निकल रहे हैं ना, उनकी हार्मनी कर दी तो आपने सारे सिस्टम के शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं की हार्मनी कर दी। 80,000 अरब, दुनिया की पॉपुलेशन 800 अरब भी नहीं है, और मेरी पॉपुलेशन कितनी है, मुझे आत्मा के राज्य में कितनी कितनी पॉपुलेशन है, 80,000 अरब। और एक एक कोशिका में, एक एक सेल में, एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शन हो रही है। कितनी रिएक्शन हो रही हैं? और समझिए 1,00,000 रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है, एक इतने देर में। 1,00,000 इंटू 80,000 अरब, कितनी रिएक्शन हो गई एक सेकंड में? कौन कर रहा है? आत्मा है तो हो रही है, आत्मा निकल के तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए कहते कर्म योगी बनो, क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए तब जाके आत्मा के पास एनर्जी होगी, तभी तो शरीर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। अगर आप जल्दीबाजी, अगर आप टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रह रहे हैं, बीमार क्यों होते हो? अगर वर्क प्रेशर टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रह रहे हैं तो क्या हो रहा है, लगभग एक सेकेंड में 1,20,000 रिएक्शन हो जाती है। जब 1,00,000 रिएक्शन हो रही है तो उसके जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, उसको बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसके टॉक्सिन्स को वॉश भी एक सेकंड में कर देती है, एक सेकंड से कम समय में कर देती है। एक सेकंड के बाद सेल फ्रेश होती है वापस, इतने टॉक्सिन बन गए और वापस साफ ही हो जाते हैं। इतनी वंडरफुल हमारी बॉडी है, आत्मा इतना बढ़िया काम करती है। किंतु अगर आप टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस होके मेटेरियल कॉन्शियस होके, और आप उसके प्रेशर के कारण ही आप टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में आते हैं, परफेक्शन के प्रेशर में आते हैं, मैंपन मेरेपन के कारण ही आते हैं, तो आपकी रिएक्शन लगभग 1,20,000 हो जाती है। तो 20,000 एक्स्ट्रा रिएक्शन उसके टॉक्सिन बॉडी साफ नहीं कर सकते, वो सेल में रह जाएंगे, कोशिका में रह जाएंगे। और इसकी बजाय अगर आप एंजाइटी में आ जाते हो और ज्यादा प्रेशर होता है, 1,40,000 रिएक्शन हो जाती, चिंता कर ले। और अगर आप इरिटेट हो जाते हो टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर के कारण से, तो 1,60,000 रिएक्शन हो जाती है लगभग। और अगर आप गुस्सा करते हो तो 1,80,000 हो जाती है, और उदास हो जाते हो 2,00,000 हो जाती है। अब समझ में आया आपको टॉक्सिन, आप बीमार क्यों होते हैं? सेल्स इसलिए बीमार हो जाती हैं क्योंकि टॉक्सिन से भर जाती हैं, पॉइजन से भर जाती हैं। हाथ पर काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करता, आंखों से दिखता नहीं है, आंखें यहाँ पर दिखना कम शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द होना शुरू लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, घुटने वीक होने लगते हैं, पैरों में लगता है जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो जल्दी चिंता गुस्सा से इसलिए बीमार होते हैं, है ना। इरिटेट होने से कैसे आदमी थक जाता है, काम करने से इंसान नहीं थकता है, फिजिकल काम करने से, किंतु इनसे थक जाता है। अब मेडिटेशन कैसे हील करता है, व्हाट इज मेडिटेशन? योग और मेडिटेशन क्या है? आपने सीखा होगा, बहुत सारा सीखा होगा, पर मैं सिंपल सी बात बताता हूँ एज ए जो मुझे प्रोफेशन मिला है उसके अनुसार, क्योंकि मुझे सिंपल भाषा में लोगों को समझाना पड़ता है और ज्यादातर लॉजिकल लोग होते हैं जो मेरे सामने आते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, है ना, आम भाषा उनको समझ में नहीं आती है। व्हाट इज योग, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट कनेक्शन। किससे कनेक्शन? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही मेडिटेशन है, राइट? तो सत्य क्या, मेरा सत्य क्या है, क्या है मेरा सत्य? बॉडी सत्य है क्या? सतीश गुप्ता सत्य है क्या? डॉक्टर सत्य है क्या? मैं मेल हूं ये सत्य है क्या? सत्य नहीं है, आज या कल नहीं हो सकता है, बदल सकता है। आत्मा सत्य है, राइट? तो मैं आत्मा हूं, इससे जुड़ गया ना अगर मैं, तो यही मेडिटेशन है। क्या है मेडिटेशन? योग क्या? अपने सत्य से जुड़ गए ना तो मेडिटेशन शुरू हो गया। ये मुश्किल है क्या? आई एम अ बीइंग, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट अ रोल, आई एम अ सोल, ये मेडिटेशन है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते चलती हर हमेशा अपने को बीइंग कॉन्शियस समझो, सोल कॉन्शियस समझो, मैं आत्मा हूं ये करो, तो बस मेडिटेशन हो गया। और जहां आत्मा है वहां परमात्मा से कनेक्शन तो है ही है, क्यों आत्मा बना तो अगर मैं अपने को डॉक्टर समझता हूँ, सतीश गुप्ता समझता हूँ, मुझे अपने पिताजी याद आ जाते हैं, मेरे को अपना टीचर याद आ जाता है, किससे मैं डॉक्टरी सीखी, कौन मेरे गाइड थे एमडी में, है ना, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन मेरे को किया, तो मेरे मेरे कौन मेरे को कौन मेरे को पढ़ाते थे, है ना, वो याद आ जाते हैं। और जब आत्मा समझता हूँ तो परमात्मा याद आ जाता है, तो उसके थ्रू मैं परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। यही तो मेडिटेशन है, परम सत्य से, सत्य से सत्य बना और परम सत्य से जुड़ गया, मेडिटेशन हो गया। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? चलते फिरते उठते बैठते चारों तरफ हर समय, जैसे मुझे याद रहता है मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता मेरे पिताजी हैं, ऐसे चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद रहता है मैं आत्मा हूँ, मेरे पिताजी परमात्मा है, नहीं उनसे क्या संबंध है? ये तो मेडिटेशन है। और क्या, कुछ किस चिड़िया का नाम मेडिटेशन है? सुपर परमात्मा और मेरे में क्या फर्क है? परमात्मा सातों एनर्जी का पावर हाउस है, मेरे पास सात एनर्जी थोड़ी सी खत्म हो गई है। सतो प्रधान, पहले जब सत्युग में आया था मैं फुल था, अभी मेरे अंदर सातों एनर्जी बहुत थोड़ी सी रह गई है, तो पहले रजो मना आदि थी, अभी तमो मना बिल्कुल खत्म हो गया, ना के बराबर रह गई, 5-7% बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। मोबाइल की बैटरी पहले 100% चार्ज थी सुबह सुबह, अभी कितनी रह गई है? less than 20% हो गई है ना। अभी बार बार मोबाइल बोल रहा है सो लो बैटरी लो बैटरी, जब बात करता हूँ तो लो बैटरी सिग्नल दिखाता है, 10% करता हूँ तो बार बार करता है, 5% होते तो बिल्कुल कहते इमीजिएटली चार्ज नहीं करता है। तो अंदर से क्या मैसेज आ रहा है? इमीजिएटली चार्ज नहीं नहीं बोलता। तो ये हमारा जो ये है मेडिटेशन, ये है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मीन्स कि मैं आत्मा राजा बन जाती हूँ, मेरे पास एनर्जी है तो मेरा आत्मा राजा बन गई, किसकी? मन की, बुद्धि की, संस्कारों के राजा बन जाती है। तो आत्मा के पास सात एनर्जी है, पहली एनर्जी द ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ, ABCD जिसे कहते हैं, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, और P4 फिर जो है उसके बाद सेकेंड एनर्जी है पवित्रता। इसका फॉर्मूला है सातों एनर्जी का, इस सीक्वेंस में ही है, KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, के फॉर नॉलेज, नॉलेज ज्ञान मतलब नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, ABCD या APCD आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा, P फॉर प्योरिटी, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उसको महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं। ये ABCD कहाँ से आता है? मुरली से, परमात्मा के जो महावाक्य जिसे मुरली कहते हैं उससे आता है। जितना अधिक हम मुरली का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते हैं तो उतना अधिक हमारे अंदर मन मन बुद्धि शुद्ध होती जाती, पवित्रता आती जाती है, और उससे फिर पीस। पीस मीन्स बींग इन द प्रेजेंट। 90% थॉट्स हमारे पास से आते हैं, भविष्य से आते हैं, पास के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स और भविष्य की इनसिक्योरिटी से आते हैं। जब हम पवित्रता हमारे अंदर ज्ञान और पवित्रता आ जाती है तो हमारी पास्ट हील हो जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, 90% थॉट्स कट हो गए, हम वर्तमान में आ गए, इसको शांति कहते हैं। ये सेकेंड एनर्जी, ये थर्ड एनर्जी पवित्रता, माना हम अपने सत्य स्वरूप में टिके, आपके भी सत्य स्वरूप को देख रहे हैं, इसको पवित्रता कहते हैं। मैं अपने को भी आत्मा महसूस करता हूँ, परमात्मा की संतान महसूस करता हूँ, और आपको भी आत्मा और परमात्मा की आत्मा समझ के परमात्मा, आप भी परमात्मा की संतान है, मेरे भाई हैं, उस तरह से महसूस करना, ये पवित्रता है। शांति, शांति पैदा होगी तो अब आपके थॉट्स भी स्लो होगी, तो अब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, दैट इज लव। अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, चाहे आप पति पत्नी हो आपस में, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे ऑफिसर ऑफिसर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज हो, इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। और खुशी किसे बोलते हैं? कंटेंटमेंट। जो आपको मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उससे आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। और जब खुश हैं तो आपके अंदर इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं। इच्छाएं कम हो जाती हैं तो आप यू कैन गो बियॉन्ड दिस बॉडी एंड बॉडीली वर्ल्ड। गोइंग बियॉन्ड आनंद, दैट इज आनंद। आनंद मीन्स आन मीन्स बंधन, अंध मीन्स मुक्त, बंधन मुक्त। आत्मा फील करती है कि मैं बंधन मुक्त हो गए, देह और देह की दुनिया के बंधन से परे चले गए, परमात्मा के प्यार में लीन हो जाते हैं, उसको कहते हैं। और पी फॉर पावर्स, शक्तियां, इससे शक्ति आ जाती है, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, राइट निर्णय करने की शक्ति, सत्य सत्य परखने की शक्ति, सत्य और असत्य को परखने की शक्ति, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, सही निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करके समा लेना। काफी सारी हमारी बहनें स्पेशली क्या करती है, सहन तो कर लेती है, समा नहीं पाती है, इससे सिर दर्द होता, माइग्रेन हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाती है ना, कैल्शियम गोली खाने, विटामिन डी से ठीक नहीं होती वो दर्द, है ना, ठीक है ना। उसके लिए सहन करके समाने की शक्ति चाहिए, उसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए, मन बुद्धि, देह और देखी दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होने की शक्ति चाहिए। उससे सहन करने की शक्ति पैदा होती है, समाने की शक्ति पैदा होती है, फिर पावर टू फेस। और भी प्रॉब्लम आने वाली है, ये मत समझो आज प्रॉब्लम आ गई और नहीं आएंगी, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, तो 8 शक्तियां पैदा हो जाती है। ये 7 एनर्जी आत्मा के पास है जो आज इंसान के पास बहुत कम, इसलिए अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। याद करने का मतलब उस संबंध से याद करना, सर्व संबंध से याद करना, तो ये प्रोसेस है। आत्मा जो है 7 एनर्जी, इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। और जब मन क्या है, मन के 4 एस्पेक्ट है, टीम कहते हैं उसको, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। विचार, कोई विचार को गहराई से करते तो भावना बन जाती है, भावना से वाइब्रेशन, दो व्यक्ति के बीच में विचार जहां संबंध होते हैं वहां मैं याद कर रहा हूँ, संबंध से याद कर रहा हूँ किसी को, वो मेरी पति है, पत्नी है, दोस्त है, भाई है, बहन है, या सिर्फ आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा को याद कर रही है, संबंध से याद कर रही है, मेरे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, 9 मुख्य संबंध परमात्मा से हमारे होते हैं। वैसे सब संबंध है, हर समय हर जगह है, किंतु अगर हम संबंध से याद करते हैं, आत्मा, आत्मा यहाँ है, परमात्मा को याद कर रही है संबंध से, तो आत्मा परमात्मा को इंटेंसली याद करें तो मेरी भावना बन जाती है, मेरे से वाइब्रेशन निकलते हैं, परमात्मा के पास तक पहुंचते हैं। परमात्मा कहता है तुम मुझे एक बार याद करते हो, मैं आपको 1000 गुना याद करता हूँ, तो परमात्मा मेरे को 1000 बार याद कर रहा है, तो परमात्मा के वाइब्रेशन मेरे को आ रहे हैं ऐसे, राइट। तो परमात्मा 1000 गुना कर रहा है, तो परमात्मा छत्र छाया बन गया, नहीं बन गया, 1000 गुना मुझसे ज्यादा कर रहा है, तो छत्र छाया के रूप में, तो परमात्मा जो जो उनके वाइब्रेशन मुझे टच करते हैं, मेरे वाइब्रेशन टच उनको करते हैं, तो परमात्मा की जो टचिंग है, क्लियर टचिंग मुझे आने, इसको क्लियर वॉयंस कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं। और जब मैं इसी भावनाओं में रहने लगता हूं परमात्मा के साथ, क्योंकि मुझे प्राप्ति होने लगती है, तो उसको सर्कल पूरा हो जाता है, सर्कल पूरा हो गया तो वृत्त बन गया एक सर्कल, तो वृत्ति बन जाती है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एटीट्यूड जैसा वृत्ति वैसी दृष्टि, फिर मुझे वैसा वैसा ही दिखाई देने लगता, दुनिया वैसी दिखाई देने लगती है, सब अच्छी दिखाई देने लगती है, लवफुल दिखाई देती, पीसफुल दिखाई देने लगती, तो मेरी दृष्टि बदल जाती, सृष्टि बदल जाती है। और जो मेरे अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, उससे एनर्जी पैदा होती है, वो मेरा आभामंडल बन जाता है, आसपास शांति, प्यार, खुशी का वायुमंडल बन जाता है। और उसमें जो परसेप्शंस और इंप्रेशंस मुझे होते हैं, महसूस होते हैं, और मेरे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, पहले मैं समझता कोई किसी का नहीं है, सब सब सेल्फिश है, अभी लगता है कि ऊपर से बहुत मदद मिल रही होती ना, और सबको आप अच्छी मदद करते हो, सब लगता है कि सब मुझे भी मदद करते हैं, भले वो नहीं करें, गाली भी देते हैं तो लोग लगता है उनको, लोग मेरे को हार पहना रहे हैं, है ना, मेरे को अच्छा लगता है, गाली भी देते हैं तो लोग ना, लगता है शायद मेरी मेरी कमियां मुझे बता रहे हैं, मुझे अवेयर कर रहे हैं। दुखी नहीं होते हम उनसे, हम सुख, हमको अच्छा लगता है, इरिटेट नहीं होते हैं, है ना। और क्या होता है, मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है ना, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं, तो मेरे को तो समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, दिखाई भी कुछ गलत देना बंद हो जाता है, तो आपकी दुनिया बदल जाती है, राइट। तो आपके बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, आपकी मेमोरीज बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं, संस्कार ही जीवन है। तो 7 एनर्जी और टीम पॉजिटिव होने लगती है, ठीक है। तो 4 से 5 आप मेडिटेशन करें, आधा घंटा आनंद का, आनंद आप समझिए क्या है, गोइंग बियॉन्ड, है ना, तो आपके हार्मोन्स ट्रिगर हो जाते हैं, और वो फिर पॉजिटिव टीम, वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। और 7 से 8 हम मुरली सुनते हैं, मुरली क्या है, 100% पॉजिटिविटी, परमात्मा की महावाक्य है ना, तो एनर्जी बॉडी की सेल्स में आ जाती है। और उसके बाद आप 8 बजे तक, तो ये आपने ये किया, 4 से 8 आप उसी मोड में रहते हैं, 100% पॉजिटिविटी रखते हैं, टेलीविजन, मोबाइल, इन बातों से दूर रहते हैं, और फिर 8 बजे के बाद न्यूज़पेपर वगैरह भी 8 बजे के बाद पढ़ते हैं, और फिर भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, क्योंकि भोजन अगर हम शुद्ध सात्विक, सातों गुणों को बढ़ाने, सात्विक मन सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाते हैं, अंकुरित फल, फल, सब्जी, सलाद, है ना, फिर अंकुरित दलिया, दूध, दही लेते हैं, फिर 11 बजे फल खाते हैं, फिर दिन में फिर पहले सलाद खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, और फिर शाम को फिर फल ले लेते हैं, और शाम को 6-7 बजे के पहले हम डिनर कर लेते हैं। शाम को बहुत थोड़ा सा डिनर करते हैं, थोड़ी सब्जी और चपाती बस। शाम को दाल चावल कड़ी नहीं खाते, प्रोटीन हाई प्रोटीन नहीं लेते, और 10 बजे से पहले सो जाते हैं, फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो अगर डाइट, प्रॉपर डाइट, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, लगभग 1 घंटा सुबह सैर कर ली, साइलेंस में परमात्मा की याद में सातों एनर्जी का अभ्यास करते हुए सैर करते हैं, तो एनर्जी सारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया, फिर और घर ऑफिस में काम करते हैं, वो भी सोल कॉन्शियस होकर करते हैं, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही काम करेगी ना, शरीर तो काम नहीं करता है। और फिर टाइम पर सोने के पहले वेंटिलेट कर लेते हैं, जो भी आज सुबह से रात तक जो भी गलती हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ गलत फलत हो गया, तो परमात्मा को बता देते हैं कि आज मुझसे ये गलती हो गई। गलतियां होती तो परमात्मा को बता देते हैं, अच्छी बात के लिए अपने आप को पैट कर लेते हैं, शाबाशी दे देते हैं, और फिर सो जाते हैं परमात्मा की गोद में, नींद बहुत अच्छी आती है। तो एनर्जी जो मेरी आत्मा शरीर के अंदर आ गई, तो शरीर के बाहर आनी शुरू हो जाती है, कर्मों में आए ना वो एनर्जी, कर्मों में आए, बीच में फिर अपने को रिमाइंड कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, सोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं ना। तो पहले 4 स्टेप हो गए ना, पहले अमृत वेला मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन आधा घंटा, फिर मुरली, फिर सारा दिन उसका अटेंशन रखते हैं, और सोने के पहले वेंटिलेशन कर लेते हैं, और पवित्र रहते हैं, 4 परहेज करते हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, सत्य का संग करते हैं, परमात्मा और परमात्मा के महावाक्यों का संग करते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, और उसकी जो मुरली है ना वो है ज्ञान मानसरोवर है, उसमें बार बार डुबकी मारते रहते हैं, इसलिए मुरली जेब में रखते हैं, ताकि अच्छी चीज हमेशा जेब में रहनी चाहिए ना, बार बार उसमें से 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, तो मन पॉजिटिव मोड में रहता है, क्योंकि नेगेटिव बहुत सारी चीज दुनिया में मिलती है हमको, आसपास देखो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, सामने भी नेगेटिव, आमने पीछे भी नेगेटिव, और अपने अंदर भी नेगेटिव भरा होता है कुछ काफी समय का, उससे बचने के लिए हमारी कवच कवच होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज हमारे अंदर पॉजिटिव टीम रहती है ना हमारे हाथ में, ये बहुत काम करती है, इसलिए तो मैं जेब में रखता हूँ हमेशा, दिल के पास रखता हूँ, इसलिए हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ये गारंटी है ना। तो फिर ऐसे करते हैं, तो सातों एनर्जी का जो हमारे अंदर थी ना, आत्मा से परमात्मा से लगातार एनर्जी आती रहती है, और हमारे अंदर से निकलते फिर हमारे आसपास आभा मंडल बना रहती है। तो जहां भी मैं बैठता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ, मेरे साथ वो आभा मंडल जाता है, चाहे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चाहे मैं अपने हॉस्पिटल में बैठा हूँ, चाहे आईसीयू में जाऊँ, सीसीयू में जाऊँ, वार्ड में जाऊँ, किसी प्राइवेट रूम में जाऊँ, जहाँ जाऊँ मेरे साथ वो एनर्जी सदा रहती है। जहाँ मैं जाऊँ वही मधुबन है ना, वहीं पर मधुबन है, वहीं पे कहते हैं जंगल में भी मंगल हो जाता है ना, क्योंकि वो शांति प्यार खुशी की एनर्जी मेरे साथ सदा रहती है, जो मैं खुद बनाता हूँ, किसी से लेता, उधार नहीं लेता हूँ, अपने बाप से लेता हूँ, ठीक है, परमात्मा से लेता हूँ, तो एनर्जी सदा साथ रहती है, तो इसलिए शारीरिक शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन में शांति प्यार खुशी सदा भरी रहती है, आनंद भरा रहता है, और समाज से सबसे संबंध भी अच्छे हैं, क्योंकि सब सबको रिगार्ड देता हूँ, तो मुझे भी रोल रिगार्ड देते हैं, मुझे ना भी दें हर्जा नहीं है, पर मैं सबको देता हूँ, तो और आध्यात्मिक हेल्थ भी अच्छी रहती है, तो मन और तन की सभी बीमारी से मुक्ति हो जाती है ना। और जो भी बीमारी आती भी है, तो आती तो सूली के माफिक है, और कांटा बन के खत्म हो जाती, कांटा भी फूल बन जाता है, जैसे मुझे हार्ट की बीमारी आई, मेरी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मुझे हो गई थी, वो 3 महीने में ठीक हो गई, फिर एक बार ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया शुरू हो गया था, तो वो भी मेरा ठीक हो गया बिना दवाई के। तो ऐसे हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, GERD ठीक हो, कैंसर भी बहुत लोगों के ठीक हो गए, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, मन डिप्रेशन ठीक हो गया, काफी लंबा सुसाइडल टेंडेंसीज ठीक हो गई लोगों की, एंजाइटी खत्म हो गई, नींद आनी शुरू हो गई। तो राजयोग द्वारा आत्मा अपनी बुद्धि को, बुद्धि जो भ्रष्ट थी वो अभी करेक्ट हो गई, दिव्य बुद्धि बन गई, मन पहले बुद्धि भटकती थी, अब बुद्धि एकदम दिव्य बुद्धि बन गई, मन जो पहले चंचल था अब मेरे लगाम घोड़ा ना, मन को घोड़ा कहते हैं, अब मेरे कंट्रोल में आ गया है, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो गई है, और संस्कार मेरे बदल गए, संस्कार आदतें बदल गई, खराब खाने पीने की आदतें छूट गई, गलत टाइम पर सोने, गलत टाइम पे उठने की आदत खत्म हो गई, सारा दिन डिजिटल मीडिया मेरे हाथ में था, अभी भी हाथ में रहता है, कि तो इसको मैं यूज नहीं करता हूँ ज्यादा, मैं यूज करता हूँ इसको, ये मेरे को यूज नहीं करता है, ये तो पहले ये मेरे को यूज करना शुरू कर दिया था, अभी मैं इसको यूज करता हूँ, ये मेरे को यूज नहीं करता है ना, मुझे जरूरत है तो मैं यूज करूंगा, नहीं तो एक साइड में रखा है आराम से, राइट। तो सब कुछ मेरे लिए सुखदायी हो गया। तो इसलिए जो भी बीमारी आए आप, बीमारी आना, बीमारी से डरने की बात नहीं है, लाइफ तो चैलेंज है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, आएंगे और सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, घर में भी आएंगी बाहर भी आएंगी, पर अगर आप परमात्मा का साथ है, कहते हैं ना अगर आपके साथ खुदा है तो क्या कहते हैं, अगर खुदा साथ है तो आप समझते हैं, मैं लाइन पूरी नहीं करूंगा, आप सब अपने आप अंदर ही पूरी कर लेना, है ना, खुदा मेहरबान तो आप समझ गए होंगे बाकी, है ना, सब बीमारियां भी आपके लिए एक अच्छा अनुभव दे करके जाएंगी, एक अच्छा इंसान बना के जाएंगी, तकलीफें चाहे मन की आए चाहे तन की आए, सब आपको चैलेंजेस जितने मर्जी आए आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी अपने को अकेला नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा ही असली धर्म धन्वंतरी है, असली वैद्यनाथ वही है ना, वही है असली डॉक्टर ना, सभी डॉक्टर्स उसको याद करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बस कुछ प्रश्न है, हम उसको ले सकते हैं अभी?
हाँ बिल्कुल ले लीजिए। मैं समझता हूँ सभी प्रश्न सॉल्व हो गए होंगे फिर भी।
हाँ जी, पहला प्रश्न है कि इनको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर्स ने 3 मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी करने को कहा है, पर ये चाहते नहीं है कि ऐसा ये करें, तो क्या गाइड करेंगे आप?
देखिए पहले तो बात है चेस्ट पे, देखिए जब भी आपको कोई बीमारी होती है एक तो कभी डरना नहीं चाहिए, मैंने पता है बीमारी माना डर, डर बने रहना, उसको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए ना, हमेशा ECG करा लीजिए, है ना, इको करा लीजिए, TMT स्ट्रेस टेस्ट कराइए, अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता तो एंजियोग्राफी करा लीजिए, और कोई बीमारी को भी पता करना अच्छा है ना, बजाय कि हम शक में रहें, पता करना और उसको एड्रेस करना जरूरी है ना, पता करिए क्या बीमारी है, कहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक खोलना बहुत सहज है, फिर मेरे को रिपोर्ट भेज देना आप एंजियोग्राफी करा के और मुझे रिपोर्ट भेज देना, ठीक हो जाएंगे, ब्लॉकेज है तो खुल जाएंगे, फिर अचानक के दिन हार्ट अटैक आए तो क्या फायदा है, अचानक आए पकड़ ले आपको तो क्या फायदा है, इसलिए उसको पहले तुम पकड़ के उसको मार दो ना। अगर कोई आतंकवादी पता लगा घर में बैठा है और उसको आपको नहीं, नहीं तो बैठा रहा अंदर से, कोई बात नहीं, इट्स बेटर टू डिटेक्ट एंड किल इजंट इट, गेट रिड ऑफ इट, इसलिए हमेशा चेकअप कराना चाहिए, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो जनरल चेकअप हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों को पता लग जाता है, और देन वी कैन फिनिश देम इन टाइम, बजाय कि इसके अंदर वो पहले पहले आपको अंदर खत्म करती जाएं, तो आप अच्छा है एक 40 साल की उम्र हो गई तो आप एक चेकअप करा लीजिए, उससे पहले भी अगर कोई सिम्टम आता तो आप अपने को जरूर चेकअप कराइए और फिर समय समय पर चेकअप कराते रहिए। ये जो नए सिस्टम आए हैं ये खराब नहीं है, मेक यूज ऑफ देम। मेरे से एक मोबाइल है, आपके पास डिजिटल मीडिया आया है तो इसका यूज करिए, बट आप इसका यूज करिए, ये आपका यूज ना करें, ऐसे ही जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनको आप यूज करिए, वो आपको यूज ना करें, ये ध्यान रखिए, राइट। तो अपना मेरी यही एडवाइस है कि अपना चेकअप कराइए और अपने बीमारी को पता करके और उसका इलाज करिए, ठीक है, और 3-dimensional हेल्थ केयर से इलाज करिए, ताकि 1-dimensional से तो आप थोड़ी देर ठीक होंगे फिर बीमार हो जाएंगे, 3-dimensional के लिए से आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, राइट।
अच्छी भाई जी, अगला प्रश्न है, सुसाइडल थॉट्स को खुद कैसे बाहर निकालें या उसको उससे कैसे खुद को बाहर निकालें?
देखिए अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उस समय क्या है बेसिकली क्या होता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, बहुत सोचने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं, बहुत थोड़े से रह जाते हैं, इसके कारण से सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उस समय आपको मेडिकल हेल्थ सिस्टम की, मेडिकल डिलीवरी की, हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी की आवश्यकता है, उसमें थोड़े से मेडिकल जो दवाइयां होती हैं वो बेसिकली कुछ और नहीं करती हैं, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का अमाउंट बढ़ा देती हैं, तो आपका थोड़ा थॉट स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, आपको इनसाइट वापस आ जाती है और सुसाइडल थॉट्स खत्म हो जाते हैं, और जब वो सिस्टम कंट्रोल में आ जाए तो उस समय फिर अभी आप मेडिटेशन भी आपको मदद नहीं करेगा, फिर बाद में आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, ठीक है, जब आपका थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए फिर मेडिटेशन आपको मदद करेगा। ऐसे स्किजोफ्रेनिया में भी यही होता है, कि उसमें आपको लॉस ऑफ इंसाइट होता है, तो उसमें आप दवाई लीजिए डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स फिर ठीक हो जाएं, डॉक्टर्स की दवाई से थोड़ा थोड़ा बीमारी कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद फिर आप मेडिटेशन विल हेल्प यू। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये ना समझे खाली हर चीज मेडिटेशन से ठीक हो सकती है, क्योंकि हम पिछले 63 जन्मों से एक दूसरे से मिलते आए, पाप कर्म करते आए, तो हमारे बहुत सारी आत्माओं से लेन देन के हिसाब किताब भी हैं। तो अगर हमें कोई आवश्यकता है, हमको अगर कोई चीज है, बीमारी है, कहीं ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बीमारी, तो हमें डॉक्टर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, राइट? पर डॉक्टर्स तो सिर्फ वन डायमेंशनल सिस्टम से इलाज करेंगे, डॉक्टर्स का जितना पार्ट है वो करें, बाकी आप थ्री डायमेंशनल से सोल माइंड बॉडी से अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लें। और ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन भी करा लें, दिखा लें, दवाई ले लें। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, इमरजेंसी कुछ हो गया, तो आप इलाज कराइए। अगर एंजियोप्लास्टी करता है, एंजियोप्लास्टी भी करा लीजिए, जो भी होता है वो कर लीजिए। किंतु बाद में परमानेंटली ठीक होने के लिए आपको जरूरी है कि बार बार बीमारी आपको तंग ना करे, फिर उसके लिए आप थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम को यूज करें, राजयोग मेडिटेशन को यूज करें, राइट?
भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे बीच में आने के लिए और हमें गाइड करने के लिए कैसे हम अपने को खुद से हेल्दी बना सकते हैं, अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए, और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमको भाई साहब ने बताया कि राजयोग के कितने सारे फायदे हैं, तो आज जो भी भाई बहने हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए हम यहाँ पे चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहे हैं, ताकि वो अपने नजदीकी सेवा केंद्र सेंटर्स में, हमारा राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स हैं हर सिटी में, तो वो जाके उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद में ही चैट बॉक्स में एक और लिंक शेयर किया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो उसपे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी संडे टॉक्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इजिली अवेलेबल हो जाए। और आप सभी भाई बहनों का आज के सेशन में हमसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
हिम्मत ना हारना कभी, तन में तनिक भी जान है, मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की